हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स नंबर 18। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाखय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरयेत्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपम् सागृजातं सहगणरघुनाथ वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधिवृन्दावनेश्वरी वृषभानुसूतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासदी गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता मात की जय हो। सातवां अध्याय जिसका शीर्षक है भगवत ज्ञान। भगवान हमें अपने भक्तों की टाइप्स के विषय में बता रहे हैं कि कौन कौन भगवान की शरण में आते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 15 में बताया कि जो नीच होते हैं ना, भगवान ने कहा नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृत्तज्ञाना असुरं भावमाश्रिता। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करते हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। भगवान ने ये नहीं कहा मेरी शरण ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसे नहीं बोला। बोला ये दुष्ट होते वो करते ही नहीं है, मैं उनको बोलता हूँ, उनको चांस देता हूँ गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से, उन्हें मनुष्य बनाया है। अब कोई मनुष्य बनने के बाद भी यदि भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता तो उससे ज्यादा नीच कोई नहीं होता, इसीलिए भगवान ने कहा। क्योंकि भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है और ये सब हमारा जो जीवन है वो भगवान का ही है, वास्तव में भगवान को समर्पित करने के लिए हमें ये जीवन मिला, भगवान के अंश हैं, हम भगवान की दया पर आश्रित हैं। और वास्तव में भगवान ने मनुष्य को इस तरीके से बनाया है, इस डिजाइन से बनाया है कि जब तक मनुष्य भगवान की शरण में नहीं जाता है तब तक उसे संसार में कभी भी वो ना ग्लोरियस हो सकता, भले कुछ भी प्राप्त कर ले, कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले, कितना ही धन प्राप्त कर ले, कितना ही सुंदरता प्राप्त कर ले, कितना ही यश प्राप्त कर ले, लेकिन वास्तव में मनुष्य जीवन की सार्थकता तब है जब आप कृष्ण के दासत्व को स्वीकार करते हो। वास्तविक हमारा यदि कोई गौरव है ना मनुष्य का, तो वो वही है कि हम कृष्ण को अपना स्वामी मानकर उनकी सेवा करने के लिए अपने आप को प्रेरित करें, सेवा का जज्बा हो। कृष्ण प्रेम में डूब जाना वास्तव में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। तो भगवान ने कहा वो बहुत नीच होते हैं, मेरी शरण में आते ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भगवान ने वो टॉपिक बंद कर दिया, बोला ऐसे लोग के बारे में क्या बात करनी, जो वैसे आते ही नहीं है उनके बारे में भगवान अगर कहना चाहते तो बहुत कुछ कह सकते थे। लेकिन भगवान ने 15 में उनको वाइंड अप कर दिया, 16 में उनका कोई बात नहीं कही। भगवान ने कहा छोड़ो अर्जुन, उनकी बात नहीं करते हैं, अभी हम उनकी बात करते हैं जो आते हैं, मेरी शरण में आते हैं। और भगवान ने बताया चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन आतो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी शरण में आते हैं, वो सब पुण्य आत्मा है, चाहे वो किसी भी मकसद से मेरे शरण में आए, चाहे उनका ध्येय कुछ भी हो, चाहे उनका पर्पस कुछ भी हो, लेकिन वो मेरी शरण में आए हैं तो वो साधारण नहीं हो सकते। तो भगवान ने बताया आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी, दुखी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, धन दौलत चाहते हैं या फिर ज्ञानी होते हैं तो मेरी शरण में आते हैं। फिर भगवान ने बताया 17 में कि चार प्रकार के आते तो हैं, लेकिन उनमें से ज्ञानी मुझे अत्यधिक प्रिय है। उसका कारण ये नहीं है कि ज्ञानी मुझे प्रिय है, उसका कारण ये कि वो मुझसे प्रेम करता है। अब बाकी सब जो आए हैं वो सब तो किसी वस्तु की इच्छा करने करके आए ना, जैसे हमने पढ़ा कोई धन लेने के लिए, कोई दुख दर्द दूर करने के लिए, या कुछ जिज्ञासा लेकर हमारे पास आते हैं, वो भी अच्छे हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, वो एकांत भक्ति करता है, वो केवल मुझे जानता है, मेरा ज्ञान रखता है, इसीलिए केवल मेरी शरण ग्रहण करना अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य समझकर मेरे पास आता है। उसको ज्ञान होता है कि मेरे पास आकर ही उसे संतुष्टि प्राप्त होगी, इसलिए वो भौतिक वस्तुओं की प्रिय इच्छा नहीं करता। प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सच्चम प्रिय, मैं उसे बहुत प्रिय हूँ और वो भी मुझे प्रिय है। लेकिन यहाँ पर हम भगवान की करुणा को, भगवान के स्नेह को देखते हैं कि जो उनकी शरण में आते हैं उनके विषय में बात करते करते भगवान थकते नहीं, भगवान और भी बता रहे उन्हीं के विषय में। जैसे जो नहीं आते उनके लिए तो एक श्लोक बोला और जो आते हैं उनके लिए बोले जा रहे हैं। आज सिर्फ भगवान उन्हीं भक्तों के विषय में कहते हैं, जो भगवान के शरण में आते हैं तो उनके लिए भगवान कहते हैं 7.18। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। उदारः सर्व इवैति ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् उदाराः सर्व इवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् उदाराः सर्व इवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् शब्दात् उदारः उदारः मतलब विशाल हृदय वाले मतलब जिनका हृदय बहुत ज्यादा उदार होता है ना उन ऐसे भगवान के लिए कि उदारा सर्व एवैते सर्व मतलब जो चार आते ना वो सारे ही उदार हैं एवैते एव मतलब निश्चय ही ये सारे उदार हैं कौन कौन जो आर्थ हैं जो जिज्ञासु हैं जो ज्ञानी हैं या जो अर्थार्थी हैं भली कुछ भी हैं परंतु वो उदार हैं ऐसे कैसे भगवान कह रहे हैं कि वो उदार हैं वैसे तो देखो भक्त भगवान को कहता है ना कि भगवान कितने उदार हैं कि भगवान सबके ऊपर कृपा करें आज भगवान अपने भक्तों को उदार कहते हैं भले वो किसी भी मकसद से आया है भगवान कहते हैं उदार आहा सर्व एवैते वो सब उदार हैं परंतु ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ज्ञानी जो है जो ज्ञान वाला है तू मतलब लेकिन होता है मतलब उनसे अलग करते जैसे दो चीजें जब बताते ना संस्कृत में तो तू सेंटर में करते हैं तो मतलब वो अलग बात होगी अभी नेक्स्ट बात में अलग कर रहा हूँ सावधान तो भगवान कहते हैं उदाराः सर्व एवैते अब इन चारों के अंदर एक क्वालिटी तो है कि वो उदार है तू मतलब ज्ञानी जो है ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् मैं आपको ये बता दूं जो ज्ञानी है ना वो आत्म एव मतलब मेरे समान है मुझे ज्ञानी में और मुझ में कोई अंतर नहीं दिखता जो ज्ञानी होता है वो सेम टू सेम मेरा आत्म एव यानी कि जैसा मैं अपने आप से स्नेह करता हूँ ना इतना स्नेह मैं ज्ञानी से करता हूँ तो आत्म एव मे मतम मेरे मत में और आगे भगवान कहते हैं आस्थितः यानी स्थित स व ही निश्चय ही युक्त आत्मा मतलब युक्त यानी कि वो सदैव भक्ति में तत्पर रहता है और माम एव माम यानी मुझको एव यानी निश्चय ही खाली मुझको अनुत्तमम परम या सर्वोच्च गतिम और मुझे ही परम सर्वोच्च गति मुझे मानता है उसे वो जान गया है कि मेरे अतिरिक्त और कोई लक्ष्य नहीं है मैं ही सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य हूँ और मैं ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य हूँ तो जो ये जान गया है उसे तो मैं अपने आप जैसा ही मानता हूँ उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ अनुवाद निस्संदेह ये सब उदासीनता व्यक्ति हैं किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त हैं वे भगवान को प्रिय नहीं हैं भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता हैं, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। श्री प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं कि भगवान कभी ये नहीं सोचता कि देखो ये तो मुझसे मांगने आए हैं, ये तो मेरी शरण में धन प्राप्त करने के लिए आए हैं, या अपने दुखों को दूर करने के लिए आए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान उनको ज्यादा प्रेम नहीं करते जो ज्ञानी नहीं है। भगवान उनसे भी प्रेम करते, इसीलिए तो उनको उदार बोला, और उनसे प्रेम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भगवान को अपना मानते हैं। अब जाहिर सी बात है, आपको यदि किसी चीज की इच्छा है और आपका अपना कोई समर्थ है तो उससे मांगने में क्या झिझक। जैसे आपको भूख लगी है तो माँ को बोलने में क्या झिझक कि माँ मुझे भूख लगी है। आपको यदि कोई वस्तु की आवश्यकता है तो आपके पिता को बोलने में क्या शर्म कि पिताजी मुझे इस चीज की आवश्यकता है। उस तरह जो भगवान की शरण में आते हैं, चाहे वो किसी इच्छा से भी आते हैं, वो भगवान को अपना मानते हैं, तभी तो आए हैं। अपना संबंध, ये प्रेम का आदान प्रदान। श्री प्रभुपाद जी कितना अच्छा बोल रहे हैं कि जो भक्त भक्ति के बदले में कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। स्नेह करते हैं कृष्ण, जैसे अगर एक कैसा हो, एक भक्त की तबीयत खराब हो, वो स्वस्थ मतलब दुखी है अभी, वो अपने आप को स्वस्थ करना चाहता है तो कृष्ण के पास जाता है, कृष्ण आप मुझे सही कर दो ना। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, भक्त की अभी जैसे मेरा कभी गला खराब हो जाता है, मैं भगवान से बहुत प्रार्थना करती हूँ, कृष्ण जल्दी सही कर दो, मेरा गला जल्दी सही कर दो, मैं बोल नहीं सक रही हूँ। तो इसमें भक्त की वास्तव में अपनी कोई इच्छा नहीं होती है कि मैं स्वस्थ रहूँ, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैं स्वस्थ नहीं होऊंगा तो फिर मैं सेवा कैसे करूँगा, जैसे मेरी सेवा रुक जाती है। इसी तरह से भक्त सदैव भगवान से कुछ मांगता भी है ना, तो उसमें अपनी गर्ज नहीं होती है, इंद्रिय तृप्ति नहीं होती है, उसमें एटलीस्ट ऐसा होता है कि ऐसा यदि हो जाएगा तो मैं भक्ति अच्छी कर सकूंगा, तो भगवान के पास जाते हैं सारे लोग। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि क्योंकि इस स्नेह का विनिमय होता है, वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं, और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। पहले आते हैं किसी वस्तु की आवश्यकता के, किसी वस्तु के अभाव में भगवान से कुछ मांगने आते हैं, और फिर भगवान कितने कृपामयी हैं, भगवान अवश्य सुनते हैं। भक्त जब वास्तव में जब हम कृष्ण से मांगते हैं ना, तो कृष्ण इतना जल्दी सुनते हैं कि हमें कभी कभी डर लगने लगता है कि भगवान तो देखो कितना जल्दी सुन रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं कृष्ण को अक्सर बोलती हूँ कि कृष्ण आपसे जब कुछ मैं मांग बैठूँ तो आप पहले सोचा करो कि ये मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप तो हर बात ही पूरी कर देते हो, तो ऐसे नहीं करा करो। अच्छी चीज़ें जो मेरी भक्ति के लिए लाभदायक हो सिर्फ वही आप मुझे दिया करो, मैं तो पागल हूँ, मैं तो कुछ ना कुछ मांगती रहती हूँ, तो आप ऐसा मत किया करो, जो वस्तुएं मेरे लिए शुभ नहीं होती हैं वो मैं मांग भी बैठूँ तो भी आप नहीं दिया करो। लेकिन भगवान इतने उदार हृदय होते हैं कि वो बस बैठे होते हैं कि भक्त कुछ मुझसे मांगे और मैं उसको कुछ दूँ, बस ऐसा लगता है गोपीनाथ खड़े हैं कि कभी कोई फरमाइश आए तो मैं उसको पूरा करूँ। तो लेकिन भगवान बहुत स्नेह करते हैं भक्तों के साथ, और जब भक्त की वो इच्छा पूरी होती है तो जाहिर सी बात है उनका प्रेम भी बढ़ने लगता है, और वो भक्ति करते बिना किसी कामना के। आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत ही खास बात बता रहे हैं, किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि इसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। उसका केवल एक उद्देश्य होता है, कि भगवान दुखी दुख भी अगर तुम मुझे दे रहे हो, अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं भी कर रहे हो, यदि मुझे कष्ट मिल रहे हैं, सर्कमटेंसेस मेरे हिसाब से नहीं है, तो भी मैं आपकी भक्ति करूँगा, क्योंकि मैं जब तक जीवित हूँ मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं आपको प्रसन्न करूँ। उसका उद्देश्य केवल भक्ति होता है, उसका उद्देश्य केवल सेवा करना होता है। वो देखता ही नहीं अपनी ओर कि ये वस्तु मेरे पास नहीं है या ये व्यक्ति मुझे डिस्टर्ब, कुछ भी नहीं देखता। उसको केवल ये पता होता है कि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करूँ। आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। अब वास्तव में ज्ञानी जो है वो अपने हिसाब से भगवान की सेवा करता है सदैव, और क्षण भर भी नहीं रहता, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा भगवान का अंश होता है, और वो तब तक संतुष्ट नहीं हो सकता है जब तक वो भगवान की भक्ति ना करे। तो वो एक क्षण भी वेस्ट नहीं करता है, सदैव भगवान की भक्ति करता है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर बात लिखी है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे इससे विलग नहीं हो पाते। अब यहाँ पर भक्त की बात श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, ज्ञानी भी सदैव भगवान की सेवा करता है दास भाव से कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ भक्त ज्ञानी के लिए भगवान ने क्या बताया, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, ज्ञानी तो मेरी आत्मा के समान है, मैं अपने ही समान उसे मानता हूँ। लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं, श्रीमद् भागवतम 1.4.68 भगवान कहते हैं, साधवो हृदयं मोह्यम् साधूनां हृदये हृदयं त्वहं मदन्यत्ति न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनाकपि साधवो हृदयं मह्यम्। भगवान कहते हैं, जो भक्तगण हैं हृदयं मह्यम्, वो मेरे हृदय में रहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर करती हूँ, ठीक है, हम अपने से ज़्यादा प्यार करते हैं या जो हमारे हृदय में रहता है उससे ज़्यादा प्यार करते हैं? कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे हृदय में आता है, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उसके लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं, है ना? बात समझने का प्रयास करेंगे आप कि जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम अपनी जान से ज़्यादा प्रेम करते हैं। अब ज्ञानी के लिए भगवान ने कहा कि ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, ज्ञानी तो मेरी आत्मा के बराबर है, मेरे स्वयं मेरे बराबर है, यानी कि ज्ञानी को मैं अपने जात जैसा समझता हूँ। लेकिन भक्तों के लिए भगवान कहते हैं, साधवो हृदयम मह्यम, भक्त तो मेरे हृदय में रहते हैं, अर्थात भक्त मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। और साधनाम हृदयम तो हम, और मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ, यानी मैं भक्तों को जान से ज्यादा प्यारा हूँ और भक्त मुझे जान से ज्यादा प्यारे हैं। आप कभी विचार कीजिए, जो भक्त हैं जिनके घर पे विग्रह है, आज मुझे ना एक मैसेज आया, बोला मैया हमारे यहाँ पर भूकंप आया है और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैंने फौरन उनको लिखा कि आप डरो नहीं, कृष्णा अवश्य सहायता करेंगे। तो बोला इस अपराधी, इस पतित जीव के लिए किसी को डर नहीं लग रहा, ये जो मेरा शरीर है वो तो पापी है, नष्ट हो तो हो जाए, मुझे तो अपने विग्रह की चिंता है। आप मुझे ये बताओ कि जब यहाँ आपके यहाँ पर भूकंप आया था तो आपने गोपीनाथ को कहाँ रखा था, गोपीनाथ को कैसे संभाला था, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे विग्रह, मैं सुबह से क्रोध में लेकर बैठा हुआ हूँ, मैं उनको नीचे नहीं रख सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है इनको कहीं कुछ हो न जाए। अर्थात भक्तों को अपनी चिंता होती नहीं है, भक्तों को केवल भगवान की चिंता होती है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, साधवो हृदयम मह्यम साधुनां हृदयं त्वहं मदन्यते न जानन्ति मद अन्यते न जानन्ति। वो मेरे मेरे सिवा उनको कुछ खबर ही नहीं है, मेरे बगे मेरे अलावा वो कुछ नहीं जानते हैं। कृष्ण के अतिरिक्त उनको कुछ पता ही नहीं होता है संसार में क्या हो रहा है, इस दुनिया में क्या हो रहा है, क्या है क्या नहीं है, उसको कुछ नहीं पता। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मेरे साथ कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता। मदन्यते न जायन्त, मेरे अतिरिक्त उसे कुछ नहीं पता। और मैं तुम्हें बताऊं, नाहम तेभ्यो मनागत, नाहम तेभ्यो मनागपि, यानी कि मैं भक्त को कभी नहीं भूलता। भक्त सदैव मेरे हृदय में रहते हैं, मैं सदैव उनको स्मरण करता हूँ। हर एक क्षण में वो मुझे याद रहते हैं कि मेरे भक्तों की मुझे सहायता करनी है, क्योंकि वो निर्भर होते हैं। ज्ञानी को अपने ज्ञान का भी आश्रय होता है, लेकिन भक्त को कुछ नहीं आता, भक्त को कोई ज्ञान भी नहीं होता सिवाय इसके अवश्य रक्ष में कृष्ण। कृष्ण है ना, वो मेरी सहायता कर लेगा। मुझे नहीं पता ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जीता हूँ। अनुकूल है ना कृष्णानु, मैं सिर्फ कृष्ण को जो नहीं अच्छा लगता वो मुझे नहीं अच्छा लगता, कृष्ण को जो पसंद लगता है वो मुझे पसंद लगता है। मुझे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं पता। और जो ऐसा हृदय में भाव रखता है तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्त को मैं कभी नहीं भूलता। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। श्री प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। अत्यंत ही सुंदर श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं उदारः सर्व एवैते, ये सब उदार है। भगवान ने सबको उदार कहा है। भगवान ने ये कहा कि मुझे इनमें कोई भेदभाव नहीं है, सारे उदार हैं। वो भगवान है, वो हमारे अपराधों को नहीं देखते, वो हमारी खुदगर्जी को नहीं देखते, अहितु की कृपा करते हैं। परंतु यहाँ भगवान कृष्ण अपने भक्तों को उदार बोलते हैं। और भक्त भी कोई सा चाहे जिस भी इच्छा से आया हो, कृष्ण तो सबको ही उदार बोलते हैं। कृष्ण कहते हैं उदारः सर्व एवैते, ये कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से सब ही श्रेष्ठ हैं, सभी उदार हैं। परंतु जो वास्तव में भक्त होता है वो हमेशा अपनी भक्ति में उन्नति के लिए साधना में गंभीर होता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चलो ठीक है भगवान को तो सब भी अच्छे लगते हैं, चाहे हम कुछ इच्छा करके भी जाएंगे तो भी भगवान को तो अच्छे लगते हैं, भगवान ने तो सबको उदार बोला है। लेकिन भक्त ऐसा नहीं सोचता, भक्त हमेशा अपनी साधना में गंभीर होता है। जैसे एक बच्चा यदि क्लास में 50% मार्क्स लेता है और उसे संतुष्ट है तो वो आगे उन्नति नहीं करेगा, उसे सदैव ये इच्छा रखनी चाहिए कि मैं कैसे 70% 80% कैसे 90% मार्क्स लूं, है ना। वो इस तरह से आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। उसी प्रकार यहाँ भगवान बोलते हैं कि सभी उदार है पर ज्ञानी श्रेष्ठ है। वो क्यों? क्योंकि उसके मन में कोई भौतिक कामना नहीं, यानी भगवान बता रहे हैं कि भले आप आए हो, आप ग्लोरियस हो, आप अच्छे हो, उदार हो, लेकिन जिसके मन में भौतिक इच्छाएं नहीं होती हैं, वो तो आत्मैव मे, वो तो मेरी आत्मा के बराबर, मेरे वो उसे तो मैं अपनी जात जैसा समझता हूँ। ज्ञानी और कृष्ण के मत कोई भी वस्तु नहीं होती है, मतलब कुछ प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। मतलब अगर आपके और आपके प्रेमी के मध्य और कोई वस्तु है तो प्रेम में आनंद नहीं है, आप अगर किसी भी व्यक्ति को किसी वस्तु के आधार पर प्रेम करते हो तो प्रेम आपको आनंद नहीं देगा। इस संसार में प्रेम का मतलब केवल इतना ही रह गया है कि मुझे उससे कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। अब संसार में देखो, आज हम मित्रता केवल उसी से करते हैं जिससे हमारा कोई लाभ होता है। जिससे हमारा कोई नुकसान होता है वो हमारा शत्रु है, जिससे हमारा कोई लाभ होता है वो हमारी मित्रता। यही मित्रता की परिभाषा हो गई है। जिससे हमें कोई लाभ ही नहीं है उससे कोई मित्रता नहीं करता। लेकिन अगर ये खुदगर्जी निकल जाती है किसी रिश्ते से तो वो रिश्ता बहुत बहुत ज्यादा मधुर होता है, मनोहर होता है। उसी रिलेशन में वास्तव में आनंद होता है जहां पर कोई हर्ष नहीं होती है, जहां पर कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती है। इसी प्रकार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी के विषय में जोर दे रहे हैं कि ज्ञानी को किसी वस्तु वो किसी वस्तु के लिए भगवान के पास नहीं आता है, बस वो आता है भगवान के लिए। उसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता, वो बस स्वयं को भगवत अर्पण करके उनकी सेवा में आनंद प्राप्त करता है। और भगवान भी इस प्रेम के बदले में स्वयं को इसके समर्पण कर देता है। ये पवित्र संबंध है जिसमें आप किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते हो। वैसे तो कृष्ण सबको प्रेम करते हैं, परंतु क्योंकि ज्ञानी किसी भौतिक वस्तु के लिए नहीं आता है, इसलिए भगवान कहते हैं, उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। उसे तो मैं अपने अपने जैसा समान, अपने समान मानता हूँ। वास्तव में भक्तों, सारा खेल श्रद्धा का है। यदि हम भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो हम भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन अगर हमें शास्त्रों की इन बातों पर श्रद्धा नहीं है, तो फिर हम भगवान के प्रति अपना समर्पण नहीं दे सकते। भगवान की शरण में जाना हम स्वीकार नहीं कर सकते। अब देखिए, सारे बड़े-बड़े ऋषि, देवता, नारद, शिव, ब्रह्मा जी भी इस बात पर विश्वास करते हैं कि कृष्ण भगवान है। ब्रह्मा जी के चार मस्तक हैं, कितनी बुद्धि है उनके पास, वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान ही की कृपा से संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है। मैं भी ब्रह्मा जी इतनी महान होते हुए, इतने बुद्धिमान होते हुए भी वे कहते हैं कि मैं भी भगवान की कृपा पर आश्रित हूँ। भगवान की अहितु की कृपा के कारण ही मैं चल रहा हूँ। इतने महान बुद्धिमान होते हुए भी वो कभी ऐसा प्रश्न खड़ा नहीं करते कि क्या इसका कोई सबूत है कि कृष्ण भगवान है। और आज हम जैसा बुद्धिहीन व्यक्ति सदैव प्रूफ मांगता है, क्या सबूत है कृष्ण भगवान है, क्या ब्रह्मा, ईश्वर, वेद व्यास, कृष्ण और भीष्म, ये सब यही इस बात की घोषणा करते हैं कि कृष्ण भगवान है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण। ब्रह्मा जी कहते हैं परम ईश्वर कृष्ण है, हमें उसकी शरण में जाना चाहिए। वेद व्यास जी कहते हैं कि कृष्ण तो भगवान स्वयं, केवल कृष्ण ही भगवान है। जो 12 महाजन है वो सब कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं कि एषवै भगवान साक्षात, ये जो कृष्ण है वो साक्षात भगवान है। नारद, शिव, सुखदेव गोस्वामी, यवराज तक इस बात को स्वीकार करते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। और यहाँ का एक कंडम व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि वो भगवान है, और वो स्वयं को एथिस्ट कहता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि वो भगवान पर विश्वास नहीं करता। लेकिन आपको एक बात बताऊं, बहुत सीक्रेट है। इवन द बिगेस्ट एथिस्ट, यू नो, ही कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली कीप्स ऑन प्रेइंग। वो हृदय में यही प्रार्थना करता है कि मैं मानता हूं कि तुम नहीं हो, लेकिन यदि वाकई में आप कहीं हो, यदि वाकई में कोई भगवान है, तो कृपया मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। हृदय के अंदर उसके भाव होता है जब वो सांस ले रहा होता है, जब दिल धड़क रहा होता है, तो उसे लगता है कि कोई तो है, कोई तो है जो निजामे हस्ती चला रहा है। अब वो इस बात को मगर नहीं मानता कि कृष्ण भगवान है, लेकिन कहीं न कहीं उसके हृदय में होता है कि कोई न कोई भगवान है, और वो भगवान से क्षमा मांगते, भगवान अवश्य क्षमा स्वीकार करते हैं उसकी क्षमा प्रार्थना, और भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। Because at least this is a big joke for God, that outside he is a big atheist and inside he doesn't believe in atheism. Because atheism is not a philosophy, atheism is a mindset. क्योंकि वो चीज जो आप साबित ही नहीं कर सकते, वो चीज, वो philosophy जो साबित ही नहीं की जा सकती, वो philosophy कैसे हो सकती है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ भगवान कितना सुंदर भाव बता रहे हैं कि कोई भी आता है, चाहे किसी भी मकसद से आता है, तो वो उदार है, क्योंकि वो आया तो है मेरे पास। तो यहाँ पर ये बात समझने की है कि ये भावना अच्छी है कि हम भगवान की शरण में जाए, लेकिन भगवान ने साथ साथ ये भी कहा है कि उदार आह सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैवमेवतमेवतम। यानी ये भावना अच्छी है कि हम किसी भी वस्तु के लिए भगवान के पास जाते हैं, ये जानते कि भगवान महान है, लेकिन भगवान हम पे कृपा भी अवश्य करेंगे, लेकिन श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में समझना चाहिए कि भगवान कैसे महान है, हमारे और भगवान के दरमियान क्या संबंध है, कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बाकी सब तो आए हैं केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन उनका ज्ञान स्पष्ट नहीं है, वो भगवान की अस्तित्व को नहीं जानते, वो भगवान की महानता को नहीं जानते। तो वो इस भक्ति में दृढ़ता से रह नहीं सकेंगे, क्योंकि कभी भी डगमगा सकते हैं। आपको भगवान की महानता के विषय में नहीं पता, भगवान की विश्वास, भगवान की अस्तित्व के ऊपर विश्वास नहीं है, तो कभी भी आपको माया अपनी ओर आकर्षित करेगी, क्योंकि आपका पूरा 100% भाव तो क्या है कि मैं भगवान से जाकर ये वस्तु प्राप्त करूं। तो ये वस्तु आपको कहीं से भी प्राप्त होगी तो आप समझोगे कि ठीक है, वही भगवान है जो मुझे दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान हमें ये सावधान कर रहे हैं कि आप आते हो चाहे किसी भी मोटिव से, आप मुझे प्रिय हो, लेकिन आपको ज्ञान अर्जित करना चाहिए, आपको मेरे विषय में सीखना चाहिए, आपको मेरे विषय में श्रवण करना चाहिए। आप जब हम श्रवण करते हैं तो उससे ज्ञान प्राप्त होता है, जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं तो उससे हमारा हृदय पवित्र होता है। तो ऐसे करते करते, भगवान के विषय में श्रवण करते 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 करते, जब हम गीता को श्रवण करते हैं, जब भागवतम को श्रवण, भगवान के शब्दों को श्रवण करते हैं, महान आचार्यों की टीकाओं को श्रवण करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा ज्ञान डेवलप होता है, हमें हमारी बुद्धि में ये बात समझ में आती है कि कृष्ण भगवान है, वो कैसे भगवान है, मैं क्यों कर रहा हूँ भगवान की भक्ति, क्योंकि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान को प्रसन्न करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, वास्तव में मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य उनको प्रसन्न करना है। तो जैसे जैसे हम श्रवण करते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है भगवान की महानता के विषय में। और भगवान कहते हैं इस तरह से, जिनको ज्ञान प्राप्त होता है, जो जान जाते हैं मेरे विषय में, वो ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय हैं और उनसे मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, क्योंकि आस्थितः संयुक्त आत्मा, वो सदैव मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहते हैं। अब यहाँ पर दिव्य सेवा क्या है भगवान की इस कलयुग में? भगवान के पवित्र नाम को जप करना और भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं को, भगवान के शब्दों को श्रवण करना, ये केवल और केवल एकमात्र सेवा है। और भगवान कहते हैं सही युक्त आत्मा, वो सदैव इस सेवा में लगे रहकर, तत्पर रहकर, मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को, मामे वानुत्तमाम गतिम, सर्वोच्च उद्देश्य को अवश्य निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। अर्थात भगवान को प्राप्त करने के तरीके में कंटिन्यूस लगे रहना, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, भगवान की कथाओं को श्रवण करना। भगवान कहते हैं मामे उत्तमाम गति, ये उत्तम गति है, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, और यूं ही युक्त रहने से आपको वो उत्तम गति बहुत सरलता से प्राप्त हो जाएगी। इसलिए भौतिक वस्तुओं की इच्छाओं को त्याग कर मेरे विषय में श्रवण करो और मेरे पवित्र नाम का जाप करो, इससे आप मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय हो जाओगे। और ऐसे करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि ज्ञान की अभिलाषा भी शून्य हो जाएगी और हम भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे। मैंने आपको भक्तों के विषय में बताया था, कनिष्ठ है, मध्यम अधिकारी है, उसके बाद उत्तम अधिकारी, फिर राजानुगा भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति की स्टेज पर। ऐसे ही करते करते भगवान के पवित्र नाम का जप करते करते, कथाओं को श्रवण करते करते एक दिन प्रेम भक्ति की स्टेज आ जाएगी और हम अवश्य कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत छोड़िएगा, ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।